दिन मंगलवार तारीख 2 जून दिनभर के साथ मैं निखिल रंजन। रिजर्व बैंक ने की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान, लेकिन सेंसेक्स ने लगाया गोता, 600 से ज्यादा अंकों की गिरावट। मैगी का प्रचार करने वालों पर बिहार में चलेगा मुकदमा, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी जमकर खा रहे हैं लोग मैगी।
इसमें कुछ नहीं है, वी आर ईटिंग, हम एक हफ्ते से रेगुलर मैगी खा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आराम से खाइए आप भी, कोई दिक्कत नहीं है।
भारत प्रशासित कश्मीर में मोबाइल टावर धमाके में उड़ा, लेकिन भारत सरकार ने लोगों से मांगा सहयोग।
लेकिन टेलीफोन कनेक्टिविटी अच्छी रहे, इसके लिए जरूरी है टावर सुरक्षित रहे, इसलिए वहाँ की पुलिस भी पूरा सहयोग करेगी, वहाँ की आवाम को भी पूरा सहयोग करेगी।
चलेंगे गिलगित और बाल्टिस्तान में हो रहे चुनाव का जायजा लेने, और होंगी खबरें खेल की भी, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। भारत के रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटा दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल में तीसरी बार ये ब्याज दर घटाई है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। इस कटौती के बाद ये रेट 7.50% से घटकर 7.25% हो गया है। रेपो रेट वो दर है जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को कम अवधि के लिए उधारी देता है। चीन की यांगसी नदी में कल शाम डूबे जहाज में से बचावकर्ता करीब 400 लोगों को बचाने की कवायद में जुटे हैं। अब तक कुछ लोगों को ही बचाया गया है। पानी के ऊपर दिखाई दे रहे जहाज के हिस्से को काटकर उसमें से 3 लोगों को बचाया गया। गोताखोरों ने जहाज के अंदर से 3 और लोगों को बचाया है। समाचार एजेंसी शिन्ख्वा के मुताबिक बचावकर्ता जहाज के अंदर से लोगों की मदद की गुहार सुन सकते हैं। द ईस्टर्न स्टार नाम के इस जहाज के कप्तान और चीफ इंजीनियर दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों का कहना है कि जहाज एक चक्रवात में फंस गया था, लेकिन डूबने से पहले जहाज ने कोई आपातकालीन सिग्नल नहीं दिया। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने कहा कि उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं के सामने कर्ज के संकट से निपटने के लिए एक ताज़ा सुधार योजना पेश की है, और अब इस संकट का हल यूरोप के नेताओं के हाथ में है। उधर जर्मनी के वाइस चांसलर सिग्मर गैब्रियल ने चेतावनी दी है कि अगर ग्रीस अपने कर्ज को नहीं चुका पाता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि वे ग्रीस के विशाल कर्ज पर एक समझौते पर पहुँचने के फ्रांस और जर्मनी की सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है कि जर्मनी और फ्रांस इसका हल ढूंढने की दूसरी बार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूरोजोन में ग्रीस के दिवालियापन के राजनीतिक नतीजे बहुत गंभीर होंगे। बहुत से लोगों का मानना है कि ग्रीस के बगैर यूरोजोन अच्छे हाल में रहेगा, लेकिन सच तो ये है कि अगर हम यूरोपियन घर के पहले टुकड़े को ही तोड़ देंगे तो यूरोप के हालात बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ये थे सिग्मर गैब्रियल के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ब्रिटेन की लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के पूर्व नेता चार्ल्स कैनेडी का आज निधन हो गया। वे 55 वर्ष के थे। पिछले महीने हुए आम चुनावों में चार्ल्स कैनेडी स्कॉटलैंड के अपने क्षेत्र से हार गए थे। वे पहली बार 24 वर्ष की उम्र में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। उस वक्त वे ब्रितानी संसद के सबसे कम उम्र वाले सदस्य रहे। 9 साल पहले उन्होंने पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया और स्वीकार किया कि उन्हें शराब की लत है। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन समेत ब्रिटेन के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनकी आकस्मिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। BBC समाचार।
BBC रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर, आपके साथ हूं मैं निखिल, bbchindi.com और मोबाइल पर भी। आज शुरुआत करते हैं उस खबर से जो आ रही है आर्थिक जगत से। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है।
This is the third in a series of welcome rate cuts by the Reserve Bank of India. These cuts are consistent with trends in
Reserve Bank के गवर्नर रघुराम राजन कह रहे थे कि ये भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए इस साल ब्याज दरों में तीसरी कटौती है और ये अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत के हिसाब से सही है। इसमें महंगाई में कमी और चालू खातों में घाटे की में कमी भी शामिल है। ये कटौती इस बात का महत्व बताती है कि अर्थव्यवस्था को नीतियों के जरिए सहयोग की जरूरत है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में तो सुधार हो रहा है लेकिन बाहरी कारण अब भी कमजोर बने हुए हैं। इस कटौती के बाद रेपो रेट यानी जिस दर पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देती है वो घटकर 7.25% हो गई है। उम्मीद की जा रही थी कि इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, लेकिन इसके तुरंत बाद ऐसे आसार नहीं दिख रहे। ब्याज दरों में कटौती की घोषणा के बाद सेंसेक्स में 660 अंकों की गिरावट आई है। थोड़ी देर पहले मैंने आर्थिक मामलों के जानकार आशुतोष सिन्हा से इस बारे में बात की और पूछा कि अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है।
एक इंडिकेटर जो पूरे इकोनॉमी के ग्रोथ को खुद आंका जाता है वो है कंपनी के नतीजों की क्या हालत रही है पूरे साल की, उसमें स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। तो अगर पूरे हम जो लिस्टेड कंपनी का यूनिवर्स है तो रिजल्ट अच्छे नहीं हुए हैं, पूरे साल के नतीजे अच्छे नहीं हुए। दूसरा इंडिकेटर जो है, जो एक और पूरा कॉरपोरेट इंडिया क्या लोन ले रहा है, क्या लोग घर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं, क्या लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं, उस पैमाने पर अगर देखेंगे तो बैंक लेंडिंग जो है करीब 2 दशक के करीब करीब अपने निचले स्तर पर है। तो एक और वजह है कि शायद हम अभी स्थिति को बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। इन्फ्लेशन एक और नजरिया जिसको ध्यान में रखते हुए ये रेट कट किया गया है 25 बेसिस पॉइंट्स का, 1/4% का, तो उसको अगर देखें तो वो RBI के टारगेट उसके तहत है, करीब 5% था अप्रैल का जब इन्फ्लेशन का दर था, 5% से कुछ नीचे था वो।
जो डेवलपमेंट का जो रेट है उसमें जो है भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, तो एक तरफ ये बात हो रही है और दूसरी तरफ जो है ये बात हो रही है अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
चीन करीब पिछले 35 सालों में अपने सबसे निचले स्तर पर है, तो हम उस स्तर पर अगर चीन को ओवरटेक कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा जश्न मनाने वाली बात नहीं है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक कर रही है, लेकिन अंत में एक बहुत ही सीधा सवाल जो कि हमारे और आपके मतलब का है, क्या लोगों को और नौकरियां मिल रही हैं? उसका जवाब बहुत बहुत ही कम लोग आपको ये मिल पाएंगे जो ये कहेंगे हाँ ऐसा हो रहा है। और जब तक वो नहीं होगा, लोगों के पास फ्रिज टीवी और जो भी कंज्यूमर गुड्स है या मोटरसाइकिल है कार है वो खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, या उसके EMI देने के लिए पैसे नहीं होंगे घर के लिए, या फिर दूसरी चीज़ों पे जाकर किसी शाम को कहीं खाना खा लिया या पिक्चर देख लिया उसके लिए पैसे नहीं होंगे। तो वो स्थिति अंत में घूम फिर कर वही आती है, हम वो कंज्यूमर स्पेंडिंग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, सिर्फ सरकार के स्पेंडिंग से इकोनॉमी नहीं ग्रो होगा। कंज्यूमर आज अपना मुट्ठी बंद किए वो पैसा खर्च करने को तैयार।
तो इस कटौती के बाद क्या कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है?
बैंक फिलहाल लोन देने की स्थिति में नहीं है, उसकी इसकी वजह ये भी है कि जो सरकारी बैंक है उनके पास उनके जो बैड डेट है, जो उनका ऐसा लोन जो दिया हुआ है उन्हें जिन्होंने वापस नहीं किया है, उसके कारण उनके पास कैपिटल नहीं है जिससे कि वो और लोन दे सके। तो जो 27 करीब पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके लिए तो ये सीधे सीधे दिक्कत है। उन्होंने सरकार से मांगा इस साल, कहा कि हमें आप और हमें कैपिटलाइज कीजिए, यानी कि हमें और पैसा डालिए हमारे इन सभी 27 बैंकों में, लेकिन सरकार तैयार नहीं है बहुत ज़्यादा पैसा डालने को, तो इसलिए उनके पास पैसे नहीं है। प्राइवेट कंपनीज अगर उनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो कर्ज जो खराब हो गए जो वापस नहीं मिल रहे हैं वो पैसे बहुत कम है, उसके बावजूद चूंकि ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से वो ज़्यादा जाकर लोन देने को तैयार नहीं है इंडस्ट्री को।
आर्थिक मामलों के जानकार आशुतोष सिन्हा बता रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है और ब्याज दरों में कटौती का इस पर क्या असर होगा। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में मैगी नूडल्स के पैकेटों की जांच के दौरान इसमें सीसा और ग्लूटामेट की बड़ी मात्रा मिली थी। सरकार की तरफ से मैगी नूडल्स के सभी राज्यों से नमूने मंगाकर उनकी जांच की जा रही है। इस बीच मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले का कहना है कि उसने बहुत से पैकेटों को बाजार से हटवा लिया है और उनकी जांच करवा रही है। इसी बीच बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की अदालत ने मैगी नूडल्स के विज्ञापन करने को लेकर नामी फिल्मी सितारों और नेस्ले समूह के प्रबंधक और निदेशक समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। पूरे ब्यौरे के साथ पटना से नीरज सहाय।
देश की जानी मानी कंपनी नेस्ले समूह के मैगी नूडल विज्ञापन और उसकी गुणवत्ता से जुड़े विवाद का जायका अब बिहार तक पहुंच चुका है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की अदालत ने मैगी नूडल के विज्ञापन करने को लेकर नामी फिल्मी सितारों और नेस्ले समूह के प्रबंधक और निदेशक समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ अविलंब प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्थानीय एडवोकेट सुधीर ओझा की ओर से न्यायालय में दर्ज कराए गए शिकायत और उसकी सुनवाई के बाद आज यह आदेश जारी किया। इसके तहत फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा सहित कंपनी के प्रबंधक मोहन गुप्ता और निदेशक शबाब आलम के खिलाफ मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की जानी है। मामले के शिकायतकर्ता सुधीर ओझा के अनुसार उन्होंने मैगी नूडल की गुणवत्ता पर संदेह जताते हुए सोमवार को अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी ओर से दर्ज कराए गए शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने आज यह आदेश जारी किया है। सुधीर ओझा विस्तार से बताते हैं कि
माननीय सीजीएम रामचंद्र प्रसाद ने आज सुनवाई के बाद महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा, नेस्ले कंपनी के प्रबंधक मोहन गुप्ता, शबाब आलम और उनके मालिक के खिलाफ खाजी मोहम्मदपुर थाना में 1,000 लॉज करने का आदेश दिया। मैंने यह आरोप लगाया है कि वर्ष 2007 से अब तक नेस्ले का जो प्रोडक्ट मैगी है उसका ब्रांड एम्बेसडर प्रचार प्रसार किया और उत्पाद को अच्छा प्रोडक्ट बताते हुए पूरे देश में इसको बिक्री करने का कार्य किया। 30 मई 2015 को जब मैंने मैगी खरीद करके खाया तो बीमार पड़ गया। मेरे साथ गवाह लोग भी खाए थे, बीमार पड़े तो मैंने इलाज कराया तो पाया कि इसमें घातक मटेरियल लीड जो शीशा होता है दे करके मैगी बनाया जाता है जो प्रचार प्रसार से महिलाएं एवं बच्चे खास करके इसे उत्साहित होकर के खाना मैगी पसंद करते हैं और जानलेवा भी हो सकता है और कई लोग बच्चे बीमार भी हुए।
कानूनी प्रक्रिया तो शुरू हो गई है लेकिन खाने की चीजों में मिलावट जैसे गंभीर मुद्दे पर किसी को समुचित दंड मिल पाएगा इसको लेकर लोगों के मन में संदेह स्वाभाविक है, क्योंकि जिन लोगों को कटघरे में लाया जाना है वे सब बड़े नाम हैं। जनता को अब भी भरोसा नहीं है कि कानून के हाथ इन जैसे लोगों तक भी पहुँच सकती है। पटना से नीरज सहाय।
अमिताभ बच्चन से लेकर माधुरी दीक्षित तक सब मैगी के प्रमोशन से जुड़े हुए हैं और मैगी में जहरीले तत्व मिले होने के आरोपों के बाद जहां एक और लोग जांच के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेझिझक मैगी खा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जब तक जांच के परिणाम नहीं आ जाते वो मैगी नहीं खाएंगे। हमारे सहयोगी वैभव श्रीवास्तव ने लोगों से पूछा कि क्या वो मैगी खा रहे हैं या नहीं।
मैगी खाते हुए तो 8-10 साल हो गए और मैगी खाना काफ़ी पसंद है। नहीं, हो सकता है गलत पदार्थ हूँ, अगर टीवी में दिखा रहे हो तो ये तो चीज़ गलत हो नहीं सकती। अभी तो रोक रखा है, उसके बाद से तो एक आध बारी खाई है, ज़्यादा नहीं खाई।
माय नेम इज़ मोहम्मद शहजी। हाँ, मैगी मैं खा तो रहा हूँ, कम से कम 2-3 साल से खा रहा हूँ। जब से मैंने सुना है कि मतलब ये इस मैंने कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल करा गया तब से मैंने खाना बंद कर दिया है। जब ये चीज़ सुनने के बाद तो बिल्कुल भी मैं खाना नहीं चाहता, बिकॉज अब है ना दिल हट गया उससे, तो कोई भी नहीं खाना चाहता। मैं क्या, कोई भी नहीं खाना चाहता।
सर, माय नेम इज़ अर्जुन। वैसे सर जी, मुझे ना मैगी बहुत लाइक करता हूँ बचपन से। एक्चुअली मेरे फादर खुद आर्मी में थे एंड दे यूज़ टू ऑलवेज प्रिफर मैगी। मैगी लाया करते थे एंड ऑल बॉक्सेस में, एंड आज तक वो यादें आज तक दिमाग में तरोताज़ा, एंड आई वुड लव टू ईट दिस। फर्क इसमें फ़र्क वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कोई भी चीज़ मार्केट में आती है तो मार्केट से या तो उठाती है या तो गिरा देती है। अब लोगों में, पब्लिक में, वो उनको उठाते हैं या ग्रैब कैसे करते हैं, इट्स अप टू द पीपल्स।
यस, ऑफ कोर्स आई हैव हर्ड अबाउट दैट। आई एम स्टॉप गिविंग मैगी टू माय किड्स, सी हाउ द कंट्रोवर्सी सेटल्स। ऑफ कोर्स चिल्ड्रन लाइक मैगी, बट यस, सीइंग द कंट्रोवर्सी आई डोंट वांट टू गिव इट राइट नाउ।
आई डोंट थिंक नेस्ले विल बी ब्राइबिंग एनीबॉडी। इफ देयर इज एनी कंटेंट, आई थिंक दे विल, यूपी गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टेकन द सैंपल्स, लेट देम कम आउट विद द फाइंडिंग्स।
क्या आप वेट कर रहे हैं उनके रिजल्ट आने का या मीडिया रिपोर्ट्स की बात मानते हैं?
नहीं नहीं, रिजल्ट आने का वेट करेंगे, एब्सोल्युटली।
इसमें कुछ नहीं है, वी आर ईटिंग, हम एक हफ्ते से रेगुलर मैगी ही खा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आराम से खाइए आप भी, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैम, क्या बच्चों को अब से मैगी देना बंद किया है या बिल्कुल नहीं?
मैं तो टूरिस्ट हूँ तो मैं तो रेगुलर, अभी तो 7 डेज से रेगुलर बच्चों को मैगी ही खिला रही
हूँ
और कोई हानि नहीं कर रहा है रेगुलर। मेरा तो एक 3 इयर्स का बेबी है और एक 11 इयर्स का है बॉय, तो मैं तो रेगुलर बच्चों को मैगी ही खिला रही हूँ। पहला प्रेफरेंस मैगी ही मिल रहा है तो मैगी ही बच्चों को खिलाया जा रहा है।
नहीं, हम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वी आर ईटिंग रेगुलरली एंड आगे भी मैगी प्रेफर करेंगे।
बच्चे, क्या आपको मैगी खाना पसंद है?
Yes, too much.
क्या आपको पता है मैगी हेल्दी है या नहीं, उससे फर्क पड़ता है?
नो, आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज जो हम खाते हैं हमें पता लग जाता है कि कैसा है कैसा नहीं है। आई थिंक मैगी इज़ द बेस्ट, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैगी, अगर टेस्ट होगा तो देखा जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मैगी से, और जो सारा कुछ आया आई थिंक मैगी की जो है ज़्यादा बिकेगी।
तो आपके हिसाब से सारी कंट्रोवर्सी उनकी और ज़्यादा पब्लिसिटी कर रही है?
हाँ, ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही है मैगी की।
तो आपने सुना कि लोग रिपोर्ट आने के बावजूद अभी भी मैगी खाने के लिए तैयार हैं और जम के खा रहे हैं। ये पूरी बातचीत हमारे सहयोगी वैभव श्रीवास्तव ने की थी।
दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे और रात 9:30 बजे।
ये बीबीसी रेडियो है और आप सुन रहे हैं हमारे सायंकालीन प्रसारण दिन भर को, और आपके साथ हूँ मैं निखिल रंजन। और अब बात करते हैं कश्मीर की। दूरसंचार की अहम सुविधा मोबाइल फ़ोन एक बार फिर भारत प्रशासित कश्मीर में प्रभावित है। कई साल पहले सुरक्षा कारणों से भारत सरकार ने जब प्रीपेड मोबाइल सेवा बंद कर दी थी, तब यहां बहुत से लोग बेरोजगार हो गए थे। अब एक संदिग्ध चरमपंथी संगठन लश्करे इस्लाम ने फ़ोन टावरों और फ़ोन सेवा बेचने वाली दुकानों को बंद करने की धमकी दी है, और ऐसा ना करने वालों को जान से मारने की चेतावनी भी दी गई है। 24 मई से अब तक सोपोर और पटन में 2 ऐसे लोगों को गोली मार दी गई है जो मोबाइल सेवा के कारोबार से जुड़े हैं। कल कश्मीर में एक मोबाइल टावर को बम से उड़ा दिया गया। पूरे ब्यौरे के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर।
डर के कारण दूर संचार से जुड़े व्यापारियों ने टावर और दुकानें तो बंद कर ली हैं, लेकिन लोग सरकार और पुलिस से नाराज हैं। लश्कर इस्लाम नाम के किसी संदिग्ध ग्रुप ने जिस तरह सिर्फ एक हफ्ते में 5 हमले करके घाटी का टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क तकरीबन जाम कर दिया, इसे सरकार और पुलिस की पराजय कहा जा रहा है। इन हमलों में अब तक 2 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। दूसरी तरफ लोगों को फोन नेटवर्क जाम हो जाने की वजह से तरह तरह की कठिनाइयों का सामना है।
मेरे जो दूर दराज दोस्त है लाइक जनूबी कश्मीर में, तो मैं उनसे काफ़ी टाइम से कट ऑफ हूँ, देयर इज नो कम्युनिकेशन, तो एक काफ़ी कम्युनिकेशन गैप आ चुकी है इस वजह से।
जो बिजनेस है वो अभी लॉसेज में चल रहा है। अगर हम लेंगे कोई भी जो भी एक्सपोर्ट का है इम्पोर्ट का, वो इसी पर डिपेंड है। दूसरा हम अगर लेंगे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो भी सफ़र कर रहे हैं। आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बहुत से लोग इंटरनेट पे ही डिपेंडेंट है।
हम लोग कहाँ जाएं, किसको बोले, मतलब अभी रिचार्ज भी खत्म हो गए, रिचार्ज भी नहीं मिल रहा आसानी से। हमारे ये बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है, मतलब उनका फोन नहीं मिलता है, या वहाँ से फोन करते हैं तो उनको हमारा नंबर नहीं मिलता है।
एज ए सोसाइटी हम सब बिलीव कर रहे हैं कि ये किसी प्रो फ्रीडम ग्रुप की कारकर्दगी नहीं है। मेरे ख्याल से पुलिस को, स्टेट को, सोसाइटी को एक साथ इस पर एक्शन लेना चाहिए।
पुलिस ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि आया इससे हमलावरों की कोई जानकारी है या नहीं। ताहम ये दावा किया जा रहा है कि लश्कर इस्लाम चरमपंथियों का ही कोई ऑफशूट है। पुलिस महानिदेशक के राजेंद्र ने वादा किया है कि चंद रोज में ही मोबाइल फोन नेटवर्क बहाल किया जाएगा।
से रियासत से बाहर हमारा बच्चे हैं, उनके साथ बातचीत भी पेरेंट्स का नहीं हो पा रहा है, दे आर वरीड। इसमें जो भी मुनासिब की कार्रवाई जो है वो होना चाहिए, वो हो जाएगी। हमने अपना स्ट्रैटेजी तय किया, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, मगर ये सारे चीज़ विल बी रिस्टोर्ड बैक टू नॉर्मलसी।
पुलिस के आश्वासन के बावजूद आज घाटी में सभी 10 जिलों में मोबाइल फोन के अक्सर टावर्स बंद रहे। कल जब श्रीनगर में एक टावर पर बम फेंका गया तो कश्मीर में भारत संचार निगम लिमिटेड या BSNL की 5 फ्रेंचाइजी एजेंसियों ने ऑपरेशन बंद कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि ये फ्रेंचाइजीज कश्मीर के 10 जिलों में सक्रिय हैं और साल में करीब 100 करोड़ का व्यापार करती हैं। एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस और एयरसेल कंपनियों ने भी शहर में आउटलेट बंद कर दिए हैं और बड़े इश्तेहार लगी गाड़ियों की यातायात पर भी रोक लगा दी है। गौरतलब है कि अलगाववादी नेता सईद गीलानी ने लश्कर इस्लाम के बारे में संदेह व्यक्त करते हुए हत्याओं की निंदा की है।
लश्कर इस्लाम के नाम से एक ग्रुप खड़ा हो गया है और फिर ये जो काम कर रहे हैं ये इस्लाम के मुताबिक नहीं इनके काम है, इनकी हरकतें नहीं है इस्लाम के मुताबिक, और जो इनके हाथों से ये कत्ल हुए हैं वो इस्लाम को बदनाम करने का अमल है। इस बारे में
मिस्टर गिलानी की अपील के बाद पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में स्थित कई चरमपंथी घुटों के गठबंधन जिहाद काउंसिल ने दावा किया कि लश्कर इस्लाम भारतीय एजेंसियों के लिए काम करने वाला घुट है जो कश्मीरी अलगाववादियों को बदनाम कर रहा है। याद रहे भारत में मोबाइल फोन का इस्तेमाल 1995 में शुरू हुआ, लेकिन सुरक्षा कारणों से कश्मीर में 2003 तक मोबाइल फोन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी गई। पिछले 12 वर्ष में एयरटेल, एयरसेल, रिलायंस, वोडाफोन और दीगर कंपनियों ने 1,25,00,000 आबादी वाले जम्मू कश्मीर में टावर्स का जाल बिछा दिया है। एयरटेल के पास सबसे ज्यादा यानी 60,00,000 ग्राहक हैं, जबकि एयरसेल को सिर्फ घाटी में 20,00,000 लोग इस्तेमाल करते हैं। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
इधर भारत सरकार ने कहा है कि वो राज्य में बेहतर मोबाइल सेवा देने के लिए कृतसंकल्प है, लेकिन स्थानीय लोगों को भी इसमें सहयोग करना होगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा,
हम
आपके प्रति समर्पित हैं कि आपका टेलीफोन कनेक्टिविटी अच्छी रहे, लेकिन टेलीफोन कनेक्टिविटी अच्छी रहे इसके लिए जरूरी है टावर सुरक्षित रहे। इसलिए वहां की पुलिस भी पूरा सहयोग करेगी, वहां की आवाम को भी पूरा सहयोग करना चाहिए।
दिन भर में बात करते हैं एक और कश्मीर से जुड़े खबर की जो आ रही है उस हिस्से से जो पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत का नक्शा देखें तो माथे पर जो चमकता हुआ ताज सरीखा हिस्सा दिखता है वो कश्मीर और उसके आगे का हिस्सा है, जिसके आधे में भारत और दूसरे आधे में पाकिस्तान का कब्जा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके बाल्टिस्तान और गिलगित में चुनाव हो रहे हैं। पहली बार यहाँ 2009 में चुनाव हुए थे और तब 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब दूसरी बार चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने पत्रकारों से कहा,
Under the so-called Gilgit-Baltistan Empowerment and Self-Government Order is an attempt by Pakistan to camouflage its forcible and illegal occupation of the regions.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप कह रहे थे कि गिलगित बाल्टिस्तान में अधिकार और स्वायत्त शासन का आदेश और कुछ नहीं बल्कि उस इलाके में होने वाले अपने जबरन और गैर कानूनी कामों को छिपाने का पाकिस्तान का एक तरीका है। ये तो हुई भारत की बात, लेकिन वहाँ गिलगित और बाल्टिस्तान में चुनावों का रंग कैसा है, क्या मुद्दे हैं, कौन उम्मीदवार है, ये सब जानने के लिए मैंने बात की बीबीसी उर्दू सेवा के सहयोगी जहीर बाबर से जो इस वक्त वहीं मौजूद हैं।
निखिल, गिलगित बाल्टिस्तान एक असेंबली है जो पहले पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज कहलाया करते थे। 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में जो हुकूमत थी उसने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए यहाँ पर एक सिस्टम नया मुतारिफ करवाया जो कि कुछ हद तक एक खुद मुख्तार किस्म का सिस्टम था, एक सूबाई सेटअप की तरह था जिसमें एक वजीर आला इस इलाके को चलाया करेगा। उससे पहले वफाक ही में एक वजारत के मातहत ही आता था जिसे वजारत कश्मीर और शुमाली इलाका जात कहा जाता था। उसमें ये पाकिस्तान के जरिए इंतजाम कश्मीर और ये गिलगित बल्तिस्तान का सारा रीजन हुआ करता था। उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत एक असेंबली बनाई गई, पहला इसका इंतखाब 2009 में हुआ था, अब दूसरी मरतबा इस कानून साज असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं। तो जहां तक ताल्लुक है गहमा गहमी का तो वो पहले से माजी की निस्बत कहीं ज्यादा है। बहुत से इलाकों में मैं गया वहां पर लोग बता रहे थे कि पहली दफा जो वफाक की मरकज की कौमी सतह की नेशनल लेवल की पार्टीज हैं उनकी तरफ से उम्मीदवार इंतखाबात लड़ रहे हैं, अगरचे उम्मीदवार वही हैं जो अपने अपने इलाके से लड़ा करते थे।
इस बार के चुनावों में प्रमुख उम्मीदवार चीफ मिनिस्टरशिप के लिए कौन है और उनके बीच में किस तरह की मतलब टक्कर दिख रही है वहाँ पर और क्या मुद्दे को लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं?
देखिए, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो तकरीबन तमाम सियासी जमातों से हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, MQM तक के उम्मीदवार यहाँ से हैं। और जो मुद्दे हैं वो लोकल सतह पर तो लोकल ही होते हैं क्योंकि ये सारे का सारा एरिया जो है ये हिमालया रेंज में है, कराकरम रेंज में है, छोटी छोटी आबादियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं और एक्सेसिबिलिटी सबसे बड़ा इनका इशू होता है कि सड़क इनको मिल जाए। उसके अलावा फिर तालीम बहुत बड़ा मसला है, सेहत बहुत बड़ा मसला है, ऐसे ऐसे मकामात जहाँ पर सरकार जो है उसकी सहूलियात बहुत कम पहुँच पाती हैं, तो वही उसी किस्म के मुतालबात लोग कर रहे हैं। लेकिन जो एक बड़ा मजमूई किस्म का मुतालबा है वो ये है कि इस खित्ते को और ज़्यादा इख्तियार दिया जाए, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत जो चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जो सिस्टम रखा गया, उसके पास अभी भी इतना इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपने वसाइल के फैसले कर सके।
भारत ने इन चुनावों को का विरोध किया है और इस पर भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी आई है, शायद अब तक पहुंच चुकी होगी। तो वहाँ कुछ इस तरह के मुद्दों पर बात होती है कि विवाद हैं जिस चीज़ को लेकर के, उस पर कोई चर्चा, कहीं कोई बातचीत, कहीं कुछ आवाज़ सुनाई देती है?
जी बिल्कुल, उस मुद्दे पे यहाँ पे बात होती है, आम लोग ज़रूर बात करते हैं और जो कैंपेन है वो भी अक्सर जो रहनुमा हैं वो इसके गिर्द अपनी कैंपेन कर रहे हैं कि जो आइनी हैसियत है पाकिस्तान की, जब आइनी हैसियत की बात होती है तो वो यही होती है कि ये पाकिस्तान ही का हिस्सा है और पाकिस्तान ने 2009 में पहली दफ़ा यहाँ पे मकामी लोगों को एक हुकूमत देकर कुछ इख्तियार दिए। वरना अगर आप ये कहें कि जिस तरह से पाकिस्तान के बाकी सूबे हैं या जिस तरह से पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में एक बाकायदा हुकूमत है जो नीम खुद मुख्तार है, वज़ीर आज़म है, सदर है, उस तरह के यहाँ पर इख्तियार नहीं है। इसी वजह से जो लोग हैं यहाँ के वो اسی طرح کے اختیارات چاہتے ہیں کہ کم از کم ہمیں کشمیر کی طرح اپنے فیصلے کچھ زیادہ کرنے کا موقع دیا جائے، یا پھر ہمیں باقاعدہ پاکستان اپنا صوبہ تسلیم کرے. لیکن پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ریجن کشمیر کا حصہ بھی تصور کیا جاتا ہے.
گلگت اور بلتستان میں چناؤں کا حال بتا رہے تھے بی بی سی اردو سیوا کے سہیوگی ظہیر بابر. چناؤ 8 جون کو ہوں گے. اور اب رخ ایک انتراشٹریہ خبر کا. عراقی پردھان منتری حیدر العبادی کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کو ملنے والی آرتھک سہایتا اور باہر کے دیشوں سے آنے والے سینکوں کی بڑھتی سنکھیا کو روکنا ضروری ہے. انہوں نے آروپ لگایا کہ انتراشٹریہ استر پر عراق کو مدد نہیں مل رہی اور روس اور ایران پر لگے پرتبندھوں کی وجہ سے عراق کو ہتھیار ملنے مشکل ہو گئے ہیں. پورا بیورا ویبھو شریواستو سے.
چرمپنتھی سموہ اسلامک اسٹیٹ کے آگے بڑھنے کو عراق کے پردھان منتری حیدر العبادی نے پوری دنیا کی ہار بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ روس اور ایران پر لگے پرتبندھوں کی وجہ سے عراق کو ہتھیار ملنا بے حد مشکل ہو گیا ہے اور اب ان کے دیش کو لگ بھگ کوئی ہتھیار نہیں مل پا رہے. فرانس کی راجدھانی پیرس میں آج 20 دیشوں کے منتری اس بات پر چرچا کرنے کے لیے مل رہے ہیں کہ اس سمسیا کو کس طرح سے روکا جائے، پرنتو روس، ایران اور سیریا اس چرچا کا حصہ نہیں ہے. عراق کے پردھان منتری نے کہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اس لڑائی میں انتراشٹریہ مدد نہیں مل رہی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ باہر کے دیشوں سے اسلامک اسٹیٹ سے جڑنے والے لوگوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے. عراق میں رہے برطانی راجدوت سر ولیم پیٹی نے کہا ہے کہ گٹھ بندھن سینا کے پاس وکلپ کم ہیں.
There's not many things that have been tried that haven't already been tried apart from large numbers of troops.
بڑی سنکھیا میں سینا کو بھیجنے کے سوا اور کوئی زیادہ وکلپ نہیں بچے ہیں جنہیں پہلے ہی اپیوگ میں نہ لایا گیا ہو. مجھے نہیں لگتا کہ اس دشا میں کوئی سوچ رہا ہے، اس لیے سیریا کی سینا کو ہتھیار دینا اور پرشکشت کرنا ایک اپائے ہے. ابھی عراقی سرکار کو مدد دی جا رہی ہے، کرد سینا کو سہایتا دے رہے ہیں اور ہوائی حملے بھی ہو رہے ہیں. اب یہ دیکھنا مشکل ہے کہ اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے. عراق میں رہے برطانی راجدوت سر ولیم پیٹی کے شبد. حال ہی میں امریکہ کے نیتتو والی گٹھ بندھن سینا کے حملوں کے باوجود اسلامک اسٹیٹ لگاتار آگے بڑھتا جا رہا ہے. گٹھ بندھن سینا کے سدس دیش اس بات پر چنتن کر رہے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کے قبضے سے رمادی شہر کو کس طرح سے بچایا جائے. کچھ لوگوں نے عراقی سرکار کے اس علاقے میں شیعہ سینا پر نربھر ہونے پر چنتا جتائی ہے جہاں سنی مسلمان آبادی زیادہ رہتی ہے. برطانی رکشا منتری فلپ ہیمنڈ نے کہا ہے کہ یہ ایک اسفل یوجنا نہیں ہے.
Ramadi is now under the control of ISIL and the Iraqi government needs immediately to respond to that.
رمادی اسلامک اسٹیٹ کے نینترن میں ہے. عراقی سرکار کو اس کا جلد سے جلد جواب دینا ہوگا اور اس کے پاس عراقی سینا اور شیعہ ناگرک سینا ہی ہے. ان کے پاس سنی سینا نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی سینا ہے ہی نہیں. برطانی رکشا منتری فلپ ہیمنڈ کے شبد. وہیں دوسری اور واشنگٹن سنستھا کے جیفری وائٹ کہتے ہیں کہ وہ اس بات پر انشچت ہیں کہ بات چیت سے کیا سمادھان نکلے گا.
There is no political will to really change the strategy. One, if you change the strategy,
اس ستھتی کو بدلنے کے لیے ضروری راجنیتک اچھا شکتی نظر نہیں آ رہی. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا اور ہمارے فیصلوں سے کیا کیا ہوا، اور یہ بھی کہ ہماری نیتیاں کارگر ہیں یا نہیں. اگر ہماری نیتیاں کارگر نہیں ہیں تو ہمیں فیصلہ لینے والوں پر سوال اٹھانا چاہیے. اور یہ بات بھی دیکھنے والی ہے کہ امریکہ اصل میں اس سمسیا کا حل ڈھونڈنے کی کوشش یا پھر ابھیلاشا نہیں درشا رہا. واشنگٹن سنستھا کے جیفری وائٹ کے شبد. پچھلے مہینے اسلامک اسٹیٹ کے چرمپنتھیوں نے انبر میں عراق کے سب سے بڑے پرانت رمادی پر، سیریا کے شہر تدمر اور پلمائرا کے پراچین کھنڈروں پر قبضہ جما لیا تھا.
عراق میں اسلامک اسٹیٹ کی موجودگی پر بی بی سی سنواداتاؤں کے بھیجے بیورے کا حال سنا رہے تھے ویبھو شریواستو. اور آج سمے کی کمی کے کارن ہم آپ کو کھیل سماچار نہیں سنوا پا رہے ہیں، ابھی سنتے ہیں مکھیہ سماچار.
بی بی سی سماچار. بھارت کے ریزرو بینک نے مودرک نیتی میں ریپو ریٹ کو 25 بیسس پوائنٹ گھٹا دیا ہے. اس کٹوتی کے بعد یہ ریٹ 7.50% سے گھٹ کر 7.25% ہو گیا ہے. چین کی ینگسی ندی میں کل شام ڈوبے جہاز میں سے بچاؤ کرتا قریب 400 لوگوں کو بچانے کی قواعد میں جٹے ہیں. دا ایسٹرن سٹار نام کے اس جہاز کے کپتان اور چیف انجینئر دونوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے. گریس کے پردھان منتری الیکسس سیپراس نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے انتراشٹریہ ادھار داتاؤں کے سامنے قرض کے سنکٹ سے نپٹنے کے لیے ایک تازہ سدھار یوجنا پیش کی ہے. ادھر جرمنی کے وائس چانسلر سگمر گیبریل نے چیتاونی دی ہے کہ اگر گریس اپنے قرض کو نہیں چکا پاتا تو اس کے گمبھیر پرینام ہوں گے. برٹن کی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے پورو نیتا چارلز کینیڈی کا آج ندھن ہو گیا، وہ 55 ورش کے تھے. وشو فٹ بال کی سنچالک سنستھا فیفا نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ اس کے سیکرٹری جنرل جیروم ویلک بھگتان کے معاملے میں شامل ہیں.
मुख्य समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। आज स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात होगी रात 9:30 बजे घटना चक्र में। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।